नमो महावतन्नाय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरवे कृष्णकृष्णगोपेशगोपिकाकांतराधाकान्तं गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मंदे कुकुंडीवरं जर्दंजाविदोषसंहितकृतं वृंदारण्यनिवासिनं हृदयशब्दामभिनमोदरं राधास्कन्दनिवेशितकोकिलं ध्यायेन् भक्त्यादीनापराधलक्ष्यैश्चित्तास्तुकामाभिनमद्वये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना इन्द्रेणमस्तु गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालो स्माय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकाकरयाजुभाव पुत्रेति तन्मयतया कर्वोऽपि तं सर्वभूतप्रेमिणः तवैवास्मि महिमामृतयाभिनम् यत्किङ्करेषु बहुशः खलु काकुकान् परस्य पुरुषस्य सुखम् यस्या कदारश्निते विश्वान् जाय त्रीनिकुञ्जभवनं वनमन्त्रम् रामानन्द संवाद रामानंद संवाद शांत दास्य सख्य वात्सल्य को पार कर मधुर रस में हम लोग प्रवेश किए। इसके पहले वर्णाश्रम धर्म, फिर ज्ञान मिश्रा भक्ति, कर्म मिश्रा भक्ति और आरोप सिद्धा और क्या संग सिद्धा, ये सबको छोड़ करके हम लोग वो ज्ञान शून्य भक्ति और ज्ञान शून्य के भक्ति में प्रेम निष्ठा भक्ति, इसके बाद में वैधी भक्ति, फिर रागानुगा भक्ति और उससे फिर दास के प्रेम में आए, शांत को छोड़ दिया क्योंकि इस रस में इसकी उपयोगिता अधिक नहीं है। विशेष करके रागानुगा चैतन्य चरितामृत असल में रागानुगा भक्ति है। रागानुगा को पाने के लिए ही वैधी भक्ति का प्रथम आश्रय दिया, किंतु वैधी भक्ति का ग्रंथ ये नहीं, वो वैधी भक्ति भी पालन करने से जैसा कि चैतन्य चैतामृत में वर्णन किया गया है वो रागानुगा को दिलाई, ऐसी ये भक्ति। और शास्त्रों में जो वैदिक भक्ति का जो देखा जाता है वर्णन, उसके द्वारा जैसे विष्णु पुराण का वो रागानुगा में नहीं परिवर्तित हो किसी भी स्थिति में, किंतु चैतन्य चैतामृत में जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया है उस तरह से साधन भजन करने से वो प्यार में किसी का है ना नौतम ठाकुर का स्वाधीनता रत्न जाने
राग
रत जने
स्वाधीनता
मार्ग ने ये प्रवेश कराएगी भक्ति इसमें चैतन्य चैतामृत की वैदिक भक्ति ये उस तरह की वैदिक भक्ति नहीं है। इसको इस प्रकार से कौशल से वर्णन किया है जो करते 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 धीरे 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 वैष्णव का संग होते हो तो ये लोभ उत्पन्न करा दे प्रथम से ही और अंत तक इसकी ये विशेषता है। वैदिक भक्ति से तो आरंभ किया और अंत में इसको रूपांतरित कर दिया। तो इस तरह से करते करते अभी हम लोग इसमें मधुर रस में हम लोग प्रवेश इसमें उन्होंने बताया पहले कल हमने बताया जे सखी नित्य सखी प्राण सखी प्रिय सखी प्रिय नरु सखी फिर इसके बाद ने बताया साधारणा साधारणी रति
समंजसा
रति
समर्था
और समर्था। साधारणी रति का है जहाँ उसकी लिप्सा समाप्त हो गई उसकी गति भी धीरे धीरे समाप्त लुप्त हो जाए इसलिए इसमें स्थायी भाव नहीं है और गाढ़ता नहीं है ममत्व भी नहीं है हो जाता माने वो भाव जो है वो स्थायी नहीं है कुछ समय के लिए रति उत्पन्न हुई स्थायी जैसी स्थायी आभार जैसी हुई और फिर वो उसके भोग कामना के साथ ही साथ में वो रति भी अंतर्हित होता है वो स्थायी भाव नहीं रहता। स्थायी भाव माने ये नहीं कहा स्थायी भाव माने वो स्थायी नहीं रहता स्थिर नहीं रहती। कुछ देर के बाद में वो भूख लगी हमको भूख लगी है ना भोजन मिल गया फिर भूख की और कोई चीज़ की जरूरत होती है चल दिया जब फिर भूख लगी तो फिर ऐसा ऐसे ही भोग किया भूख जब लगी तो वो हुआ और जब वो भूख समाप्त हो गई किसी भी कारण से तो वो रति भी वहाँ पर अच्छा भी किया इसलिए श्रीमद्भागवत में बस कृष्ण से मिलन में दो बार पूजा का नाम आया है इसके बाद में और कहीं नहीं आया। और स्वार्थ प्रेरित है भक्ति में स्वार्थ नहीं होता इसलिए इसको वहाँ से इसमें रति भी गाड़ी है मैंने रति ये गाड़ी है और स्थाई भी है प्रगाढ़ भी है स्थाई भी है किंतु मर्यादा के द्वारा बधी हुई है इसलिए प्रगाढ़ नहीं हो पाती है पूर्ण रूप से एकदम खन नहीं हो जाती इसलिए ये समंजसा है इसके द्वारा वशीभूत कृष्ण नहीं हुई इसमें कभी कभी अपना स्वार्थ भी रहता है और यह तरह तरह के भावों में विभक्त रहती है इसमें जो रति होती है वो दूसरे दूसरे लोगों में विभक्त हो जाती है जैसे सप्तभाम रुक्मिणी जी का रुक्मिणी की रति है कृष्ण के प्रति किंतु पुत्र के प्रति भी तो वात्सल्य है कौन पुत्र है प्रद्युम्न जी और नाती है कौन
अनिरुद्ध
उसके प्रति भी रुक्मिणी जी का कुछ है अपने भाई रुक्मी के प्रति भी कुछ न कुछ त्रुटि है किंतु गोपियों का ऐसा कहीं भी किसी का उल्लेख नहीं मिलता जो गोपियों का प्रेम कहीं भी विभक्त हो वो अविभक्त है यहाँ तक कि कृष्ण की प्रीति भी विभक्त है कोटि कोटि रूपों में विभक्त है इसलिए न पा रहे हम लोग उनकी प्रीति बहुत कह रहे हैं बहुनिष्ठ है और इनकी है ये आशक्त रहेंगी गोपियाँ कोई गृह कार्य में व्यस्त रहेंगी, कोई भी काम में व्यस्त नहीं, व्यस्त कैसे रहेंगी, घर लिख रही हैं किंतु चित्त कहाँ है, गोविंद दाम करना, झाड़ू दे रही हैं किंतु चित्त है वहाँ, ओखल में कूट रही हैं चित्त वहाँ पर, कोई भी काम कर रही हैं, किसी के बच्चे को खिला रही हैं चित्त वहाँ, उनका चित्त भी भक्त ही नहीं। अब ये बताया जो राजोत्सव में गोपियों की के प्रति कृष्ण का जैसा प्रसाद हुआ और किसी को भी नहीं हुआ, किसी को कभी नहीं प्राप्त, और उसके लिए ये श्लोक न्यायो अनुज ये सब दिख रहा है। अब उसी की पूर्ति के लिए और एक कह रहे इस रस में दो भाव, आलंबन उद्दीपन, आलंबन दो प्रकार का, आश्रयावलंबन और विषयावलंबन। यहाँ पर आश्रयावलंबन को बताया और इसमें विषयावलंबन को लिए बताया, दोनों जब तक नहीं रहेगा तब तक रस नहीं होगी, रस नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर गोपियों की महत्ता दिखलाई। इसमें दोनों हैं, दोनों होने पर भी प्रधानता दिखला दिया आश्रय का, कृष्ण उनके गले में हाथ डाल करके और इनसे कुछ प्रत्याशा की गोपियों से, जैसे प्रसाद के लिए कल बतलाया था राधा कुंड में और सब बहुत जगह ऐसा मिलता है। अब यहां पर दोनों यदि नहीं होगा तो हम लोग समझ भी नहीं सकते। एक बात और है, यहाँ के लोग रोटी पाते हैं, यहाँ के लोगों को चावल दिया जाए ना दो बेला लेंगे, वो नहीं
बोल ले सकते।
बंगाल में बिना अन्न के लोग जीवित नहीं है, वो यहाँ आने पर भी यदि ताजा नहीं मिला तो चावल को रात में बना करके पानी में भिजा करके रख करके सगरी, उसमें उनको बड़ा आनंद और रस आता। अच्छा ऐसा और यहाँ के लोगों को आता नहीं,
रोटी खाने वालों में गरीब आदमी,
रोटी खाने वाला गरीब आदमी है, अमीर आदमी रोटी नहीं खाता। अच्छा तो ऐसा क्यों है बतलाओ, वहाँ वालों को चावल अच्छा लगता है, यहाँ वालों को रोटी अच्छी लगती है, क्यों? जलवायु में जैसे भी हो उनका अभ्यास हो गया है और उनकी रुचि ही ऐसी हो गई, इसलिए जिसकी जैसी रुचि है ऐसी चीज नहीं मिलने से उनमें रुचि नहीं। शांत रस वाले मान लिया कि कृष्ण को इस रूप में जो देखेंगे कि नहीं साक्षात मन मान मान होता, शांत रस वाले के गले में यदि कृष्ण अपनी भुजाओं को डाल दिया वो चाहेंगे कि नहीं, वो जल्दी से छुड़ा करके खाते, अरे ये कहाँ से ही आ गया,
आफत आ गया,
आफत मानेंगे नहीं मानेंगे, क्योंकि उनमें वो आधार ही नहीं है रस का, नहीं समझेंगे। कृष्ण जितने भी सुंदर हों कंस के सामने जाने से क्या होगा, उसका क्रोध का पारा एकदम चढ़ जाएगा, उनका यह मधुर रूप उसके हृदय में उतरेगा ही नहीं, उसमें वो चीज नहीं है जिसमें आस्वादन कर। हम लोग भी ये सब सुन रहे हैं, किसी को अच्छा लगता होगा किसी को अच्छा नहीं लगता होगा, क्यों नहीं होगा, वो आधार नहीं, इसलिए ये पांचों रस अपने में जो है वो सब स्वतंत्र रूप में उस व्यक्ति के लिए वही सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए शांत रस वालों के लिए शांत रस सबसे श्रेष्ठ है। सखरस दास्य रस दास्य वालों के लिए सबसे वही श्रेष्ठ है, उसे बढ़कर के कुछ है ही नहीं। सखाओं के सामने यदि श्रृंगार रस का भाव आए ना तो हंसी उड़ाएंगे कृष्ण की भी और उनकी भी। इसी तरह से सब रस में उनमें उपकरण एक ऐसा होता है जिसके लिए वो आस्वादन होता है या अच्छा और रुचि होता है, वो उपकरण होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं, ये जो श्लोक श्रीमद् भागवत से दिया, तासाम आविद्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर भर सग्वी साक्षात मन्मथ, ये राजपंचाई का श्लोक। अच्छा, यही रूप यदि यशोदा जी के सामने में प्रकट होता तो क्या होता, होता कि नहीं होए गए, होए गए। यदि ये भी हो गया तो यशोदा जी को बात्सल्य रस मिल जाए और कोई आई नहीं सकता, क्योंकि उससे आस्वादन करने का वो उपकरण जो होना चाहिए वो है नहीं। अब राजपंचर अध्याय में श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान, पिछले अंतर्ध्यान किसी को हुआ अहंकार और किसी को हुआ मान, किसी को हुआ सौभाग्य का अभिमान सौभाग्य मत और किसी को हुआ मान, मान का प्रसादन करने के लिए और सौभाग्य मत को दूर करने समन करने। और भी इसके बहुत से कारण हो सकते, राधा जी की सर्वोत्तमता प्रकाशित करने के लिए भी हो सकता है, होगा कि नहीं, इसमें राधा जी की सर्वश्रेष्ठता दिखलाने के लिए ही कृष्णवास अंतर, राधा जी सबसे श्रेष्ठ। अब वहां पर कृष्ण का कृष्ण के अंतर ध्यान हो जाने पर विरह में कातर होकर के कृष्ण और कभी वन में अंधकार में चलने लगे, गोपियों को यह सहन दे, पहले तो वो राधा जी से मिली, फिर राधा जी को साथ लेकर के यमुना के उपवन में तट पर गई और वहां सभी मिलकर के विरह में आतुर हो गया। और उसी समय में विरह में जब अत्यंत आतुर हो गई और कृष्ण से रहा नहीं था, जैसे यशोदा जी के बंधन में यशोदा जी का परिश्रम देकर के कृपयाशीत स्वबंधन है, इनका इनकी विरह आरती को देकर के उनसे रहा नहीं गया, साथ ही साथ कृपा शक्ति आविर्भूत होकर के इनको प्रेरित कर दिया और वो साथ ही साथ में प्रकट हो गए। तासाम आविर्भूत शौरी, उनके बीच में शौरी कृष्णचंद्र जी स्मयमान मुखाम्बुज, स्मयमान अर्थात मुस्कुराते हुए पीताम्बर भर, पीताम्बर को धारण कर सरगवी वनमाला को जो पहले गले से लेकर के पैरों तक लंबा मान और साक्षात मन मन मथ, इस प्रकार से वो इसका साधारण अर्थ यही है कि सब गोपीय मंडल में ये आविर्भूत हो गए मुस्कुराते हुए और वनमाला और पीताम्बर के साथ में मनमथ मनमथ। दो चीजें, एक तो यहाँ पर विषय का वर्णन, कृष्ण के विष मान जो सबसे सर्वोत्तम रूप है मनमथ, मनमथ को भी मन के मत को मत, साधारण रूप में मनमथ उसको कहते हैं कामदेव, कामदेव का रूप नहीं, किंतु प्रत्येक प्राणी जो चेतन है किसी भी योनि का शरीर हो उसके मन और इंद्रियों पर बैठ जाते हैं और उसके मन में बैठ करके कभी कभी तादात्म्य हो जाते हैं और ऐसा उत्तेजित करते हैं कि उस समय अपनी बुद्धि अपनी शक्ति कुछ भी काम नहीं करती, एकदम पागल एकदम बना देते हैं। ये हैं मन मत माने समस्त प्राणियों के अंदर यही सृष्टि का कारण है, मनमत ही कारण है। उस समय कोई भी संत धर्म यहाँ तक कि ब्रह्मा शंकर इत्यादि कंट्रोल नहीं कर सकते, ये मन मनमत ये है कौन, इनके मूल उद्गम है कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, वो किंतु अपराकृत कामदेव हैं, उनके ये अंश और विकृत रूप है, ये
जगत
के काम विकृत विकृत प्रतिफलन जिसको कहते हैं या अंश, ये अनर्थ के कारण है। किंतु वो जो कामदेव अपराकृत काम है वो कृष्ण संबंधी काम को हृदय में उदित करते हैं, वो है अपराकृत कामदेव। वो काम यदि हम लोगों के हृदय में उदित हो जाए थोड़ा सा, उसका आभास भी हो जाए, ये जगत का जड़ीय काम जो है वो सब एकदम दूर हो जाए। जब तक वो उदित नहीं होता तब तक ये काम और संभावी है, ये रहेगा, जितना साधन करो है हो सकता है कि और बढ़ जाएगा। वो उनका भी दो रूप है, मूल उनका मूल कौन है, ये चतुर्विंश के अंतर्गत में प्रद्युम्न जी और समस्त चतुर्विंशों के ये मूल कारण बतलाए जाते हैं प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न जी रति से मिले कहाँ पर,
बाणासुर के
वो किंतु इस पूर्ण कहानी दी गई है, एक तरह से रूपक समझो, वो चीज रूपक स्थूल भाव है, भीतर में वो चीज को जाकर के समझने की चेष्टा करनी चाहिए, रूपक रूप में समझने से नहीं, स्थूल व्यक्ति केवल रूपक समझ करके स्थूल व्यक्तियों में, और ज्ञान पुरुष जो है गुरु परंपरा से उस तथ्य के भीतर में प्रवेश करने की चेष्टा। ये कामदेव का जन्म हुआ कृष्ण से, होने पर भी ये कृष्ण जो है द्वारका वाले उनसे जन्म होता है गुरु कामदेव का नहीं, किंतु ये कृष्ण भी, ये कृष्ण का भी मूल है कौन,
ब्रजेंद्र,
वो अपराकृत समस्त कामदेवों के भी मनमत को भी मन को भी मथन करने वालों का भी मनमत है। इनका इनके में कितना प्रकार के आकर्षण है, ये उज्ज्वल लिंगमणि इत्यादि नायक कितने प्रकार के होते हैं, समस्त नायक जगत में एक गुण रहेगा एक प्रकार का होगा तो दूसरा नहीं हो सकता, हम 96 प्रकार के बतलाए गए नायक, एक तो पूर्ण ब्रज में पूर्णतम, मथुरा में पूर्णतम और द्वारका में पति और उपपति के भाव से ये दो और, तो तीन दुनी छ हो, और धीरललित धीरशांत धीरोदात ये चार प्रकार के, तो छौ का 24 वन और 24 के बाद में फिर फल क्या दृष्ट
फल और शांत
और दो और क्या अनुकूल अनुकूल दक्षिण
षट दृष्ट,
ये चार 24 चौका जगत में नायक दो प्रकार का एक में नहीं है, तो ये सब किंतु कृष्ण में वृद्ध गुणों का सामंजस्य होने से एक ही में सब कुछ, जैसे धीर है अनुकूल है, अनुकूल कभी भी सठ नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, किंतु कृष्ण में दोनों
सठ किसको कहते हैं और भ्रष्ट किसको? भ्रष्ट माने प्रत्यक्ष रूप में लक्षित होने पर भी वो चीज और कहता है ये नहीं, ये है भ्रष्ट। और सठ का वो चोपी चोरी जो पूछता है, सामने अगल बगल में खूब साधु और पीछे से, तो ये सब कृष्ण में अद्भुत रूप से सब में विदग्धता के वजह से ये सब कुछ समझ। इसका वर्णन उज्ज्वल नीलमणि में जब भजन करते 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 जब उस स्थिति में हम पहुंचेंगे तब कुछ समझ सकते हैं, पढ़ने से भी नहीं होगा। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि पढ़ने के साथ में साथ साथ में भजन करना पड़ेगा, वैसी रुचि और लोभ होगा, तीन रात उसमें तन में रहेगा, तब स्वरूप शक्ति की कृपा से ये चीजें हृदय में स्फूर्ति होने पर थोड़ा थोड़ा समझ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, रुचि नहीं होगी। ये तो बतला मुझे। और वैसे ही गोपियों में वहां पर भी होकर के 300 कितना साठ
360
प्रकार की नायिका सब उसमें वर्णन किया। ये सब गोपियों में संपूर्ण रूप से ये चीजें, सभी चीजें नीचे वाली सभी चीजें उन्नत चीज में होती है, ऐसे ये सब चीजें, ये सब का अच्छी तरह से नहीं समझने से हम लोग इसको समझ ही नहीं सकेंगे, ना रसास्वादन। अब यहाँ पर कृष्णचंद्र जी यहाँ इस श्लोक में दिखलाया गया कि गोपियाँ सबसे श्रेष्ठ हैं, गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो सर्वश्रेष्ठ है, और कृष्ण अपना सबसे सुंदर जो रूप है, मनोहारी आकर्षक सब विषय में श्रेष्ठ रूप वो दिखलाते हैं केवल मात्र गोपियों को ही, और किसी को नहीं। एक बार थोड़ी सी झलक सप्तभामा रुक्मणि और ये को दिखला दिया तो वो सभी लोग पागल हो गए।
नव वृंदावन में
यहाँ पर कह रहे हैं ताराम आविर्भूत सौरी, कल बतलाया था ना सौरी कहने का ये तात्पर्य, सुखदेव जी गोपियों के पक्ष में हो और पक्ष में होने से कुछ कृष्ण पर उनका भी क्रोध कुछ आ गया, क्रोध तो नहीं मैंने रोष उनको हो गया। सौरी सौरी कौन है? सूरसेन, सूरसेन के
वसुदेव,
सूरसेन के वसुदेव हैं ना, और सूरसेन के पिता का नाम अजामिल, अजामिल के दो संतान सूरसेन और
परजन्य,
परजन्य परजन्य के नंद महाराज और उनके हुए
वसुदेव
महाराज सूरसेन, और सूरसेन से वसुदेव जी, वसुदेव के कृष्ण इधर और उधर नंद के कृष्ण दोनों मिलकर के एक ही रेख में। तो यहाँ पर सूर कहते हैं, सूर भी सेन माने सेन वंशी है, जादव वंशी है, हृदय बहुत कड़ा कठोर होता है, वो युद्ध में लोगों को जीत कर बड़े प्रसन्न होते हैं, यदि किसी को पराजित कर दिया, शत्रु पराजित हो गया, उसमें बड़ी वीरता मांगते हैं। कृष्ण जी गोपियों को यहाँ पर जीत लिए ऐसा समझ करके बड़े प्रसन्न हो गए, आज इनको खूब अच्छी तरह से रुला दिया और दर्दर इनको घुमा दिया और फिर हमें ये तड़प रहे हैं, इसको देख करके इनको बड़ी प्रसन्नता हो, इसलिए मानो वो बड़े प्रसन्न होकर के वहाँ पर उदित हैं, इसलिए है ना वो समय मान मुखाम बद हंसते हुए किस लिए हमारी विजय हो, इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी को ये नहीं पाया, आप बड़े प्रसन्न हैं, आप निश्चित में सूरसेन के ही वंश से प्रकट हैं, आप में अभी भी क्षत्रिय भाव, आप में सरलता माधुरता ये सब कुछ नहीं, इसीलिए आज हंसते हुए आप प्रकट हो रहे हैं, हमारी जीत हो गई, गोपियों को हमने रुला दिया और वो पराजित हो गए, जो पराजित होता है वही रोता है, इसलिए इसलिए कठोर होने के नाते उनको सूरसेन की। फंसते हुए किस लिए आए?
पहला तो ये कि हमारी विजय, और दूसरी भावना इसलिए कि कुछ लजाते हुए मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए लजाए, मैंने तुम लोगों को बहुत कष्ट दिया, ऐसा तुम लोग समझ रहे हो, इसलिए इसमें पीताम्बर धर माने क्या? पीताम्बर धर इसकी क्या विशेषता है? पीताम्बर धर का एक तो सौंदर्य, और दूसरा हुआ पीताम्बर को ऐसे लंबा कर और ऐसे पकड़ लिया,
क्षमा मांगने के लिए
हंसते हुए मुस्कुराते हुए गले में कपड़े लपेट कर, बल नहीं तो ऐसे कर दिए होंगे और ऐसे कर रहे हैं, इसलिए पीताम्बर था। श्रद्धि का तात्पर्य स्वर्ग को जैसे माला को धारण करते हैं, पीताम्बर को भी ऐसे धारण करके हाथ जोड़ करके कुछ लजाते मुस्कुराते हुए उसमें कृष्ण का सौंदर्य और भी बढ़ गया। श्रग्वी माला किस लिए? देखो मैं कहीं नहीं गया, झूठ मूठ तो तुम लोग, अरे मेरी माला वही है जो तुम लोगों ने पहनाई, हमारी प्रिया जी ने जो हमको माला पहनाई वही माला, माला तो मैंने बदली, देख लो, इसलिए माला को हंसते हुए साक्षात मन मन मत, साक्षात मन मत मैंने ये इस मन मत की तो कोई बात ही नहीं, काम दे मन मत हुए
प्रद्युम्न,
और उनके मूल अंशी हुए कौन? द्वारकाधीश, और उनके भी मूल कौन है? अपने रूप को देख करके अपने भी आकर्षित हो जाते हैं, ये मन मत साक्षात मनमत मनमता मैंने अपने रूप को देख करके भी वो राधिके व राधिका की भांति अपने भी सौंदर्य को रसास्वादन करने की तीव्र लालसा उनके हृदय में जग जाए, इसलिए साक्षात राधिकेव का तात्पर्य क्या? राधिके व राधिका की भांति ही राधिका जी कृष्ण को जैसे देखती हैं ऐसे अपने रूप को देख करके उनके भी अंदर में भावना हो जाती है, जब मैं भी स्त्री होकर के कामनी होकर के इस रूप को आस्वाद, इसलिए राधा जी का भाव लेकर के पश्चात चैतन्य महाप्रभु के अवतार में उन्होंने जब तक हृदय में ऐसी आरती नहीं होगी, आरती किसको कहते हैं? दैन्य, दैन्य और प्रेम दोनों पर्यायवाची शब्द बदला है, विनत भगवता में पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं?
समान
अर्थ, यदि प्रेम नहीं होगा तो कभी भी स्वाभाविक दैन्य या आरती नहीं आ सकती, और यदि स्वाभाविक दैन्य नहीं है तो कभी प्रेम नहीं हो सकता, बिना प्रेम के दैन्य नहीं, अब बिना दैन्य के दोनों एक ही चीज के दो पहलू हैं, जितना ही दैन्य होगा प्रेम भी उतना ही होगा, और जितना अधिक प्रेम होगा उतना आरती और दैन्य भी होगी। राधा जी की जो आरती और दीनता है वो स्वाभाविक है, भक्तों की जो दीनता और आरती होती है वो स्वाभाविक होती है, हम लोगों में आरती और जो दैन्य होता है ना ये स्वाभाविक नहीं होता है, क्या होता है? चाहते हैं जो दिखावटी न हो, स्वाभाविक आ जाए, किंतु होती नहीं, क्योंकि प्रेम नहीं है, इसलिए प्रेम का आभास भी कुछ है तो दैन्य का आभास भी इसमें। जब कृष्ण ने उनकी इस प्रकार से स्वाभाविक विपुल आरती और दैन्य देखा तो कृष्ण भी बिना दैन्य और आरती के भगवान नहीं मिलते हैं, इस श्लोक में यही कुछ आया, विश्वनाथ चतुर्वर्ती ठाकुर जी ने भी ऐसा कहा, इसलिए ये दैन्य कैसे आए?
कौन से श्लोक में दैन्य?
इसी श्लोक में।
बतला है जीव गोस्वामी ने जो गोपियों के सामने जो प्रकट हुए वो गोपियों की आरती को देकर के कृष्ण की द्रवित हो और द्रवित होकर क्या भरा नहीं सके। और साथ ही साथ में हम लोगों को भी दया आती है किसी के दैन्य को देखकर, किसी से शुद्ध रूप से हरि कथा हम कहेंगे। इसलिए कहते हैं सबसे क्यों नहीं कह देते, उसमें दैन्य नहीं, क्यों नहीं करेंगे। मैं आपका शिष्य हूं, वही अकेले शिष्य हैं, भाई वहां पर नहीं चलेगा। इसलिए स्वाभाविक रूप में जब दैन्य होगा तभी ये हो सकता है। जिसके अंदर में जितना दैन्य है गुरु जी के वचनों को या गुरुओं के वचनों को वो उसको धारण करने की क्षमता अभी होगी और चीज को समझ लेगा। और जहाँ दैन्य नहीं है वहां पर चीजें भी नहीं, यहाँ तक ही ममता भी दैन्य नहीं रहने पर नहीं रहती। ममता कहाँ आई, दैन्य से तो ममत्व आएगा। इसलिए सब चीजों का मूल है दैन्य। इसलिए फिनादपि सुनीत चे नकार, फिनादपि सुनीत भाव नहीं आएगा, दंभ किसी प्रकार से भी रहेगा, अहंकार रहेगा अपनी विद्या का, धन का, रूप का, किसी भी चीज का। इसलिए प्रेम आते ही सबसे पहले हृदय को द्रवित और आरती युक्त कर देता है। इसलिए जिसके अंदर में जितना ही अधिक धन्य होगा भगवान की इन सब चीजों को भी वो ग्रहण करेगा, भगवान ही उसने उसके अधिक अधिक से अधिक चीज।
केवल श्रोता के अंदर में या वक्ता के अंदर में भी कुछ होता
है,
केवल श्रोता के अंदर में दैन्य होना चाहिए या वक्ता के अंदर में भी कुछ होता है,
वक्ता में अधिक
केवल जा सकता है कि कोई यदि सुनने को इच्छुक है, अभिलाषी है,
नहीं कोई वक्ता अपने लिए भी कह सकता है, ये श्रोता नहीं समझने से नहीं समझे। सुखदेव गोस्वामी का जो दैन्य है उस दैन्य को शिष्य लोग नहीं भी समझ सकते। जितना ही अधिक अनुभव युक्त आदमी होगा और वक्ता होगा उसके अंदर में दैन्य होगा, नहीं तो उन चीजों को समझ, नहीं तो वो तटस्थ है। तटस्थ होकर के जैसे सनक सनंदन सनक कुमार इत्यादि, बिना तटस्थ के ये सब कहा ही नहीं जाएगा। तटस्थ होकर के ही कोई कह सकता है कुछ, अन्यथा नहीं कह सकता। उस भाव में एकदम डूब जाएगा वो वक्ता नहीं नहीं कर सकता। इसलिए वहां पर वक्ता और श्रोता दोनों साधक हैं ये समझ। यदि वक्ता ने समझ लिया कि मैं साधक नहीं हूं तो वो वक्ता ही नहीं। जब समझा जाए दूसरों की शिक्षा देने के लिए हम
जैसे
सुनेगा सुनेगा ही नहीं,
तो उसमें तो ये सांसारिक स्थिति और सांसारिक भावना आ जाती है कि नहीं।
उसी लिए पहले बतलाया जो जिसमें जिस चीज की पोटेंशियल होती है वैसे ही होगा। इनको किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, किंतु भागवत में लिखा गया क्यों उपेक्षा करें, गुरु होकर के किसी की उपेक्षा करनी चाहिए क्योंकि क्यों नहीं। एक के साथ प्रेममयी सख्य भाव से वो कहेंगे व्यवहार और एक को करेंगे
प्रेममय कृपा अपेक्षा
कृपा करेंगे केवल और अपने प्रति प्रेममय व्यवहार कर रहे हैं ऐसा, ये क्यों लक्षित हो रहे हैं चार प्रकार के उनके। ये वक्ता का दोष है, सबके साथ ही एक ही भाव सख्त भाव से सबके ऊपर में कृपा करें,
एकदम मध्यम अधिकारी का लक्षण निकल
जाएंगे। इसलिए वक्ता उत्तम अधिकारी होगा तो वैसा होगा,
व्यवहारिक स्थिति में ये बात किंतु उन्नत अधिकार में जाकर के ये बात नहीं,
उन्नत अधिकार में किसी से बोलेगा नहीं, विशेष विशेष व्यक्तियों से। चैतन्य महाप्रभु ऐसे पार्शियल पक्षधारी पक्षपात करने वाले बस तीन आदमी को लेकर के तथा दो आदमी को कहते हैं और किसी को वहां पर आने नहीं देते। अब इससे बड़ा क्या उदाहरण,
तो इससे भेदभाव
हाँ भेदभाव कटु हो गया। क्योंकि महाप्रभु ने उनको बैठने नहीं दिया, किसी को आने नहीं दिया।
सुखदेव गोस्वामी तो उत्तम महाभाग
कोई आएगा ही नहीं,
सबके स्वभाव में सबके सामने कहा। सुखदेव गोस्वामी उत्तम महाभाग बोलते सबके सामने स्वभाव में कहा, केवल परीक्षित महाराज को केवल नहीं सुनाया।
नहीं, परीक्षित को भी सुना,
जो सोनोगा ऋषि भी सुने। सुखदेव गोस्वामी
भाव का संक्रमण कैसे कराया, आके आगे भजन करके चलो।
अभी
इतना ही
संभव,
एक ही बात को एक 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 सभा में मैंने एक बात की, किंतु एक बात को ऐसे ढंग से कहा जो विभिन्न प्रकार का श्रोता अपने अपने अनुसार उसको। जैसे एक जगह कहीं देखा भी कल परसों कुछ दिन हुआ, देखा शाम हो गई है, अब इसको ब्राह्मण जो थे ब्रज वाले, शाम हो गई माने क्या, अब हम लोगों को संध्या करने का समय। मैया ने सुना जी शाम हो गई, अब हमारा बेटा। गोपिया ने सुना वो क्या 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 सुने, शाम हो गई माने। एक ही बात ढिढोरा बज रहा है ब्रज, शाम हो गई दूसरा को। अब देखो जो कैसे कैसे अधिकारी लोग कैसे कैसे, ठीक वैसे ही है। कृष्ण प्राप्ति उपाय बहुत विध है, कृष्ण प्राप्ति तारतम में बहुत आया, कृष्ण प्राप्ति के बहुत से उपाय, बहुत से एक दो में ये सब मैंने कहा, कहाँ से वर्णाश्रम आचारता से लेकर के और अभी तक गोपी भाव सत ले आए, यहाँ पर स्पेशल गोपी का कोई विचार नहीं, सब साधारण गोपियों के लिए। यहाँ तक बतलाया कि कृष्ण प्राप्ति के वर्णाश्रम भी उपाय है, कर्ममिशा ज्ञानमिशा भक्ति भी, औपाधिक भक्ति भी, ये यथान गीता का वो क्या है, मनुष्य पात्र सर्वत इसमें है, जे जथा नाम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजाम्य हम,
मम वर्तन्ते मनुष्य पात्र सर्वस्व।
अच्छा, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पात्र सर्व, इसका अर्थ क्या,
क्या मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले
जितने भी मनुष्य हैं ये सब मेरे पथ का
अनुसरण करते हैं।
कैसे, मनुष्य पार्थ सर्वत सर्वत, सभी लोग हमारे मार्ग को ही, हमारे पाने के मार्ग पर ही सब अवस्थित। कैसे, कंस कैसे अवस्थित, विषय लोग कैसे अवस्थित है कि नहीं है, कुछ न कुछ में सभी लोग, यहाँ तक कि पाश्चात्य देश वाले लोग जो अत्यंत भोगी हैं वो लोग भी, वे लोग जो हमको पाने के लिए जो कुछ भी करते हैं उनका जथा योग्य में जैसा जो हमारे प्रति भजन करता है मैं वही वैसे प्रकार से उनको प्राप्त होता हूँ अथवा उनकी इच्छाओं को मैं पूर्ण करता हूँ खुशी है। किंतु हैं सभी, किंतु यह समझना बड़ा भारी कठिन है, जो समस्त मनुष्य ही भगवान के मार्ग पर ही अवस्थित हैं इसको समझ लेना बड़ा भारी कठिन है। कुछ कुछ उत्तम महापुरुष लोग कुछ कुछ समझ सकते, हम लोगों के लिए समझ, नहीं तो हमारा किसी से विरोध नहीं होता, किंतु उसमें तारतम्य है, हैं सभी तारतम्य उनमें। एक वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला उसमें आसक्त रह करके उसमें धर्म अर्थ काम चाहता है और उसमें भगवत उपासना कुछ करता है, नारायण की शालग्राम की ये सब और उसी को श्रेष्ठ समझ। और एक नाम उपचार कुत पूजनम आर्त बंधु, वो उस प्रकार से प्रेम के सहित भगवान की उपासना, दोनों में बहुत तारतम्य है। ऐसे इन सब में जितने अभी तक बतला गया है कृष्ण मिलते हैं सब में, किंतु इसमें तारतम्य है, कृष्ण प्राप्ति तारतम्य बहुत आज है, जो
वर्णाश्रम धर्म का पालन करता हुआ सर्वग्राम इत्यादि शिलाओं को पालन करता अर्चन इत्यादि, वो धर्म अर्थ और काम। अधिकांश लोग काम के लिए करते हैं, काम माने अभिलाषा की पूर्ति के लिए संसारी, उसी के लिए धर्म करते हैं, धर्म के द्वारा फिर अर्थ प्राप्त करते हैं, फिर अर्थ से ये ऐसे ही घूमते रहते हैं। उसी तरह से उसके ऊपर वाले धीरे 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 ले चल रहे, किंतु जाग्य रस से ही सर्वोत्तम तटस्थैया विचारी ले अच्छे तरह। सभी जो भी कुछ मार्ग का अनुगमन कर रहे हैं वो अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, यही हमारी सबसे श्रेष्ठ उपासना है ये समझते हैं। जो कुछ साधुओं के संग में आ गए और उनका निरंतर सेवन करते हैं और श्रवण करते हैं, वो तो धीरे धीरे इस चीज को समझते हैं।